ओम शांति। हम सभी बाबा के चुने हुए रतन ब्राह्मण कुलभूषण जो प्रतिदिन नियमित रूप से ज्ञान भी सुनते हैं और योग अभ्यास भी किया करते हैं। योग के भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव भी करते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली वे बाबा के बच्चे हैं जिन्हें योग की गहराई का अनुभव है। इस बात को हम भक्ति मार्ग से सुनते चले आ रहे हैं कि भक्ति में भी जिन लोगों ने साधना की, भक्ति की और योग के गहन अनुभव करना चाहे, भले भक्ति मार्ग में परमात्मा की यथार्थ पहचान नहीं थी और फिर भी जैसी भी पहचान भावना थी उस अनुसार भगवान को पाने के लिए या गहन अनुभव करने के लिए लोग गुफाओं में तंद्राओं में जाकर के बैठ गए। हजारों प्रवृत्ति में ग्रस्ती में रहने वाले ग्रस्त से निवृत्त होकर के संन्यास मार्ग की ओर चल दिए कि वह योग के गहन अनुभव कर सके। परंतु क्योंकि परमात्मा की ही यथार्थ पहचान नहीं थी उन्हें, तो परमात्मा के निकट भी नहीं पहुंच पाए, गहराई का तो अनुभव क्या करेंगे वो। परंतु जिन्होंने भी गहन अनुभव करना चाहा, उन्होंने स्वयं पर मेहनत की। साकार बाबा पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने जब दिव्य साक्षात्कार कर लिए और उसके बाद योग के गहन अनुभव करना चाहे, तो उन्होंने अपना सब कुछ समेट दिया और बाबा पर सर्वस्व अर्पण कर दिया। हम सभी इस बात को जानते हैं कि जैसे सागर बहुत ही विशाल होता है, बहुत गहरा होता है, सागर के किनारे यदि कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसे ठंडक का अनुभव होता है, नजारे भी दिखाई देते हैं, वह शीतल जल की लहरें, सागर के इर्द गिर्द खड़े हुए लोग, वो सब दिखाई देते हैं और उसका वो आनंद लेता है। परंतु किनारे पर खड़े होकर के आनंद लेता है, पर कुछ चंद लोग और होते हैं जो थोड़ा दूर से सागर के नजदीक आते हैं और अपने पांव को वो पानी में डुबोते हैं। सोचते हम स्नान तो नहीं कर सकते, परंतु थोड़ा सा गीले तो हो ही जाएं। थोड़ा सा भी जल की छींटे उन पर आती हैं, उस ठंडक से उनको कुछ अच्छा लगता है और जो किनारे में खड़े हुए दृश्य देख रहे होते हैं लोग, उनकी अपेक्षाकृत इन्हें कुछ अच्छा अनुभव होता है। परंतु कुछ और भाग्यशाली लोग जो सागर के अंदर जाते हैं और मछलियों को ही केवल पकड़ पाते हैं और पद्मा पदम भाग्यशाली जो सागर की गहराई में चले जाते हैं और रत्नों को प्राप्त करके ले आते हैं। अच्छा उनको भी लगता है जो किनारे पर खड़े थे, उससे अच्छा उनको लगा जिन्होंने अपने पांव हाथ गीले कर लिए, उनको भी अच्छा लगा कुछ प्राप्ति हुई जिन्होंने मछलियों को पकड़ लिया, लेकिन जिन्होंने रत्नों को पाया उनकी खुशी उनका आनंद विचित्र प्रकार का होता है। वैसे हम सभी बाबा के बच्चों में भी प्रतिदिन सेवा केंद्र पर जाने वाले, गंगा के सागर के तट पर जाने वाले और किनारे खड़े होकर के अन्य भाई बहनों को देखते हैं कि हाँ ये नियमित रूप से ज्ञान और योग का अभ्यास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, वो खुश होते हैं, स्वयं भी ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं और औरों को भी देखते हुए प्रसन्न होते हैं। लेकिन उन्हीं में से बाबा के कुछ बच्चे मनन चिंतन गहराई में आते हैं, कुछ बच्चे मंथन करते हैं और कुछ बच्चे ज्ञान की योग की इतनी गहन अनुभूति करते हैं जो बाबा के प्यार में खो जाते हैं, तो उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभवों रूपी रतन प्राप्त होते हैं। यदि हम किसी एक स्थान की खुदाई करें, थोड़ी सी खुदाई करके फिर उसे छोड़ दें, फिर दूसरी जगह खुदाई करें फिर उसे छोड़ दें, ऐसे थोड़ी सी खुदाई करने से खड्डे बन जाते हैं, लेकिन यदि उसी एक जगह की निरंतर खुदाई गहराई से करते रहे तो कुआं बन जाता है। कुआं बना माना उतना पानी आ गया तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से खड्डे तो बन जाते हैं, हम ज्ञानी योगी कहलाते हैं, वीकेस भी कहलाते हैं, परंतु ऐसे कुएं बन जाएं जो हमारे जीवन को देख करके दूसरी आत्माओं की प्यास बुझ जाए, वो प्रभु के इतना नजदीक आ जाएं, उनके अंदर ये जिज्ञासा पैदा होने लगे, हमारे तृप्त संतुष्ट जीवन, हमारे योगी जीवन को देखकर कि आखिर इन्होंने क्या पाया है, उसके लिए चाहिए उसकी गहराई। आप सभी में से हो सकता है कुछ भाई बहनों ने महाभारत में वर्णित एक वृत्तांत को सुना होगा। जिस वृत्तांत में इस बात को बताया गया कि गहन अनुभव करने के लिए उसका अभ्यास चाहिए, और अभ्यास के लिए एक बार बताया ये जाता है कि पांडव और कौरव दोनों एक शिविर में थे, महाभारत का टाइम था, और उस समय ऐसा अर्जुन ने देखा भीम को कि रात्रि के टाइम पर बैठ करके भीम खीर खा रहे थे। तो अर्जुन बोले, भैया ये क्या रात के अंधेरे में अब खीर खा रहे हैं, और आपका हाथ मुख तक ही जा रहा है। तो भीम ने एक ही शब्द कहा, अभ्यास हो गया ना खाने का, इसलिए भीम है। और अर्जुन को ये बात ऐसे तीर की तरह लग गई कि अभ्यास से रात्रि में बिना रोशनी के भी हमें ये खाने की आदत है कि हमारा हाथ हमारे मुख तक ही जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तब अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और वो बाहर गए और एक वृक्ष को देखा, वृक्ष के तने को उन्होंने निशाना लगाया, वृक्ष के पत्तों को निशाना लगाया, फिर एक एक चीज को वो निशाना लगाते रहे, पक्षियों के हर चीज पे, हर अंग पे अलग अलग निशाने लगाए। इतना अभ्यास किया कि रात को भी अभ्यास और दिन में भी अभ्यास करके वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। हम सभी को क्या करना है, क्या करेंगे हम सभी? हम सभी बाबा के बच्चों को ये मालूम है कि योग ही ब्राह्मण जीवन की उन्नति का आधार है। योग के आधार से ही सफलताएं, योग के आधार से हर कर्म में सिद्धि मिलती है, योग से ही रूहानियत दिव्यता आती है, योग से ही धारणा मूर्त बनते हैं। सारा आधार बहुत बार बाबा मुरली में दोहराते हैं कि सारा मदार योग पर है। और कभी कभी बाबा ये भी बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ज्ञान भले बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन योग के चैप्टर में उतने होशियार नहीं है। इसलिए योग के लिए चाहिए मेहनत, और वह भी गहन अनुभव, योग की गहराई। उसके लिए केवल मात्र 5 बातें वो अपनी बुद्धि में रखनी है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सार रूप में पांच बातों की तरफ यदि हम ध्यान देंगे तो योग के अच्छे गहरे अनुभव हम कर पाएंगे। इसमें पहली बात है स्वच्छता। आप पाएंगे स्वच्छता कैसी चाहिए। भले आज तो हमारी सरकार ने भी उस और कदम उठाए हैं, स्वच्छता का ही चारों तरफ बोलबाला चल रहा है, लेकिन बाबा ने जिस स्वच्छता की बात की है, ये भी हम जानते हैं कि बाहरी स्वच्छता भी जरूरी है और आंतरिक स्वच्छता और ज्यादा जरूरी है। बाहरी भी आप देखेंगे स्वच्छता होती है तो वहां हमें बैठने की इच्छा होती है, कहीं गंदगी होगी तो हम थोड़ी ही सी देर में वहां से उठ जाएंगे, हमको बैठना अच्छा नहीं लगेगा। तो बाहर की स्वच्छता भी बाबा ने सिखाई है, हमें नियम बताए हैं स्वच्छता के लिए भी। हमें बाबा ने कहा कि बच्चे कि आप शौच के लिए जाते हो तो स्नान करना जरूरी है। बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य व्रत पवित्रता वो स्वच्छता जरूरी है। बाबा ने कहा ब्रह्माचारी बनना वो स्वच्छता जरूरी है। तो ऐसी हमारे चित्त की शुद्धि, चित्त की स्वच्छता, माना जो बाबा की श्रीमत, वही हमारे मन बुद्धि में हो। किसी भी प्रकार की मनमत या परमत की अशुद्धि उसमें मिक्स ना हो। हमारे मन बुद्धि में केवल बाबा की श्रीमत घूमे। बाबा के महावाक्यों को हम प्रतिदिन सुनते हैं और बाबा के महावाक्यों में बाबा की हर रोज श्रीमत अलग अलग बाबा बच्चों को देते हैं। तो ऐसे मन की स्वच्छता हो जो हमारे संकल्प में भी या हमारे स्वप्न में भी व्यर्थ को हम समय ना दें, मार्जिन ना दें। और वो तभी संभव है जब हर समय बुद्धि में श्रीमत की वैल्यू, श्रीमत के प्रति रिगार्ड होगा। बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, वह बुद्धि में चलेगा। तो बाबा की जो शिक्षाएं हैं वही बाबा की श्रीमत है और श्रीमत भगवानो वाच्य के आधार से ही हमारा मन और बुद्धि स्वच्छ बन जाती है। क्योंकि जितना मन बुद्धि के अंदर बाबा की शिक्षाएं घूमती हैं तो समय नहीं होता है। आप देखेंगे कभी हम किसी कार्य में बहुत बिजी होते हैं और उस व्यस्तता में कोई हमारे पास आ जाए और हमें कहे कि भाई थोड़ी देर के लिए मेरे साथ तुम मार्केट तक चलो, तो हम क्या कहेंगे, सॉरी मेरे पास ना टाइम नहीं, आज मैं बहुत बिजी हूं। वैसे हमारा मन बुद्धि भी बाबा की शिक्षाओं में हमेशा लगा रहे, उसमें ही बुद्धि बिजी रहे। तो जहां वो शिक्षाएं स्थान ले लेंगी तो बाहरी कलयुगी दुनिया की अस्वच्छता की बातें, कलयुगी दुनिया की बातें, पुरानी दुनिया की बातें वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे जब हमारा मन और चित्त दोनों ही स्वच्छ हों तो हमें बहुत अच्छा बाबा के योग का याद का गहन अनुभव होगा, क्योंकि जैसे स्वच्छता में मन लगता है ना, उसी तरीके से मन जब स्वच्छ होगा तो हमारी इच्छा होगी कि शुद्ध परम पवित्र बाबा के पास हम बैठें, और परम पवित्र बाबा को भी आएगा कि इस बच्चे को मैं ब्लेसिंग दूं, इस बच्चे का जो संकल्प है मैं पूरा करूं। दूसरी चीज है चिंतन। ज्ञान तो हम सभी प्रतिदिन सुनते हैं, सभी रेगुलर मुरली सुनते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तभी हम बाबा से मिलने के लिए आते हैं। परंतु जो हम ज्ञान सुनते हैं उसका चिंतन हम गहराई से करें, और ऐसा भी नहीं है कि हम चिंतन करने के अभ्यासी नहीं हैं। देखिए, कोई यदि दुख की बात, कोई हमारी जो मन पसंद बात नहीं है, अगर वो हो जाती है तो कितना हमारा चिंतन चलना शुरू हो जाता है, रात की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, और बार बार यदि वहां से अपनी बुद्धि को हटाना चाहते हैं तो भी बुद्धि हटती नहीं है, क्योंकि चिंतन चल पड़ता है, चिंतन वो चिंता का रूप ले लेता है। लेकिन आप सभी अनुभवी हैं, किसी भी चीज का जो चिंतन चल पड़ता है और जो हमारी नींद को भी डिस्टर्ब कर देता है, उसमें हम पांच शब्द लगा देते हैं। कौन से पांच शब्द लगाते हैं जो चिंतन ऑटोमेटिक चलता है? वो पांच शब्द हैं, एक है क्या, क्या किसी ने कोई बात कही, ये क्या कह दी, ये क्यों कह दी, ऐसा तो मैंने कहा भी नहीं था, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, उसने ऐसे कह दिया, क्यों कह दिया, किस लिए कह दिया, कब कह दिया और किस लिए कह दिया। क्या, क्यों, कैसे, कब, इसलिए, किसी भी चीज के लिए जब पांच शब्द हमने जोड़ लिए तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक चिंतन शुरू हो गया, वो चिंतन नेगेटिव हो या पॉजिटिव। अभी नेगेटिव चिंतन करने के आदती बन गए थे, पहले ब्राह्मण बने, बाबा ने शुद्धि सिखा दी, बाबा ने कहा नेगेटिव छोड़ो, पॉजिटिव बनो। अब जो बाबा प्रतिदिन ज्ञान सुना रहे हैं, श्रीमद दे रहे हैं, उसका चिंतन करो। अब इस चिंतन के लिए भी यही पांचों शब्द जोड़ दो। देखिए कितनी सहज युक्ति है, सहज है ना, ये तो करने के अभ्यासी रहे हैं। अब ज्ञान की किसी भी बात के लिए कि बाबा ने ये बात ज्ञान की कही है, बाबा ने कहा तुम अपने को आत्मा समझो, बाबा ने कहा है आत्माभिमानी बनो, बाबा ने कहा है बच्चे वापिस घर चलना है तो इस पुराने कीचड़ पट्टी की दुनिया को भूलो, जो भी बाबा ने हमको शिक्षाएं दी हैं, उसके स्पष्टीकरण के लिए उसका चिंतन करें कि बाबा ने ये बात क्या कही, बाबा ने किस उद्देश्य से कही, बाबा का भावार्थ क्या था और बाबा क्या चाहते हैं मुझसे, और कैसे इस चीज को मैं अपने जीवन में धारण कर सकती हूँ। आप पाएंगे अगर ये शब्द हमने जोड़ दिए तो तो ज्ञान का चिंतन इतना अच्छा होगा कि सारा दिन बुद्धि हमारी ज्ञान चिंतन में ही रहेगी। अब बुद्धि ज्ञान चिंतन में ही लगी है तो और कोई बातों के लिए वक्त नहीं है, और कोई गंदगी उसमें जाएगी नहीं, और हमें उस चिंतन से बाबा के और समीपता का अनुभव होगा। तीसरी बात वह धुन, किसी चीज की धुन लग जाए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि कार्य चाहे वो लौकिक हो, चाहे कारोबार का हो, चाहे वो अलौकिक सेवा का हो, परंतु जब किसी भी चीज के लिए धुन लग जाती है तो फिर किसी भी चीज की परवाह नहीं होती। लौकिक दुनिया में किसी को यदि धन कमाने की धुन लग जाती है, उसे बच्चों की भी घर की भी परवाह नहीं रहती, केवल धन ही पूरा समय बुद्धि में रहता, वही दिखाई देता है। धुन लग गई है, बिजनेस को बढ़ाना है, किसी को पद पोजीशन के लिए धुन लग जाती है, किसी को प्रमोशन के लिए, किसी को पढ़ाई के लिए। आप देखेंगे जिनको धुन लग जाती है वो चाहे पढ़ाई पढ़ रहे होंगे उसमें भी नंबर वन चले जाएंगे, धुन लग गई तो व्यापार में भी नंबर वन चले जाएंगे, धुन लग गई घर को श्रृंगारने बनाने में संवारने में, अब देखिए वो बहुत बढ़िया घर भी बना लेते हैं। हमें जो धुन चाहिए वो धुन चाहिए बाबा में डूब जाने के लिए, गहराई में जाने के लिए वो धुन लग जाए। चौथी बात वह दिनचर्या। बाबा ने हमें इतना सहज करके बताया है कि सुबह से रात तक हमें कुछ प्लान नहीं करना, हमें कुछ नहीं सोचना। बाबा ने दिनचर्या हमारी दिव्य अलौकिक बना के दी है। हमें क्या संकल्प करना है, क्या सोचना है, वो भी बाबा ने बताया। हमें क्या बोलना है, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए बाबा ने हमारी दिव्य दिनचर्या बना के दी हुई है। मधुबन में हम आते हैं, अब यहाँ पर हमें योग के बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, जबकि इतना ज्यादा कोई हम मेहनत भी नहीं करते। क्लासेस हो रही हैं, हम क्लास में आ रहे हैं, शुद्ध भोजन ब्रह्मा भोजन बना हुआ मिलता वो खा रहे हैं, बाबा की पालना में पल रहे हैं, परंतु अनुभव क्या करते हैं, जैसे कि बाबा की गोदी में ही बैठे हुए हैं। योग के लिए कोई ऐसे बैठ के कोई खास मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन उस दिनचर्या के अनुकूल हम बंध गए हैं, वैसे हम चल रहे हैं, तुम सहज योगी बन गए। तो बाबा ने हमें क्या कहा कि जब सुबह आप उठते हैं अमृत वेले, तो उठते ही पहला संकल्प बाबा गुड मॉर्निंग। देखिए पहले ही शब्द आया बाबा गुड मॉर्निंग, तो गुड तो यहाँ स्टार्ट हो गया, और किसको गुड मॉर्निंग की, जो सचमुच हमें गुड बनाने वाला है। तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी हमने क्या सोचना है, बाबा ने बता दिया। फिर उठते ही हम ये सोचें, बाबा ने कहा उठते एकदम से अपने पांव अपने बेड से नीचे मत रखो, थोड़ी देर बैठ जाओ। किसी शरीर के कार्य के लिए भी बाद में उठो, पहले 3 मिनट 5 मिनट बैठ जाओ और बैठ करके उस समय सोचो कि मैं विजयी आत्मा हूं, मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा का दुआओं का हाथ मेरे सिर पे है, बाबा सदा मुझे ही देखते हैं। सवेरे सवेरे हमने ये संकल्प कर लिए और उसके बाद हमने अपने पांव नीचे रखे, तब हमने अन्य कार्य किए, तो सोचने का काम भी बाबा ने किया। बाबा ने हमें बताया कि आपने शुद्ध सात्विक भोजन करना है। कैसी दिनचर्या हमारी, शुद्ध सात्विक भोजन करना है। अब शुद्ध सात्विक माना बाबा की याद में बना हुआ शुद्ध भोजन, भोजन बनाए परंतु बाबा की याद में बनाए और सोचें कि बाबा के लिए भोग बना रहे हैं। और जब बाबा के लिए भोग बना रहे हैं तो कितना शुद्धि से बनाएंगे, कितना प्यार से स्वच्छता से भगवान को स्वीकार कराना है। अब आप देखिए कार्य भी कर रहे हैं, भोजन भी बना रहे हैं, लौकिक जिम्मेवारी भी पूरी कर रहे हैं और साथ साथ योग के गहन अनुभव की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने दिनचर्या ही हमारी ऐसी बना के दी, भोग स्वीकार कराए बिना भोजन नहीं खाना है। यहाँ जो बैठे हैं कौन कौन ऐसे बाबा के स्पेशल बच्चे हैं जो भोग स्वीकार कराते ही हैं, हाथ खड़ा करेंगे? और जिनके हाथ नीचे हैं वो अब शुरू करेंगे। अब जब जाएंगे तो जरूर बाबा को भोग स्वीकार करा के हम खाएं। पूरे 84 जन्म भगवान से हमने लेना है, भक्ति मार्ग में मूर्तियों को खिला रहे थे और अब हमें ऐसा श्रेष्ठ अवसर मिला है कि हम भगवान को भोग स्वीकार कराते हैं। तो बाबा जन्म जन्मांतर के लिए हमारे भंडारे भरपूर कर देते हैं। बाबा ने हमारी दिनचर्या में ये भी बताया कि बच्चे पूरे दिन में किसी न किसी आत्मा को बाबा का संदेश जरूर देना है। अब संदेश देना है माना जरूर हमारे अपने अंदर वो ज्ञान होगा, हमने मुरली सुनी होगी तो हम दूसरों को बाबा का संदेश देंगे। हर रोज के लिए बाबा नए नए तरीके बताते हैं और जिस दिन का जो तरीका बताया यदि हम उसी दिन उसी तरीके से करते हैं, उसी विधि को अपनाते हैं, सेम डे, बांसी हो जाने के बाद नहीं, बाबा ने आज विधि बताई और हम यूज करें एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के बाद कोई भी चीज कैसी हो जाएगी? हम उसी विधि को उसी दिन प्रैक्टिकल करें तो हम पाएंगे बहुत ही सहज हमारी दिव्य दिनचर्या के आधार से हम अच्छे योगी बन जाएंगे। बाबा ने हमारी दिनचर्या ही इतनी शुद्ध श्रेष्ठ बना दी। बाबा ने कहा बच्चे जो भी लौकिक है उसको आप अलौकिक बना दो। बहुत बार सुनते हैं इस बात को, कैसे बनाते हैं लौकिक को अलौकिक। लौकिक में बाल बच्चे परिवार के साथ हम रहते हैं, परिवार में हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब किताब भी हैं, लेकिन फिर भी उनको लौकिक को अलौकिक बनाना है। तो मान लीजिए छोटा बच्चा है, चाहे वह बेटा है चाहे वो पोता है, अब उस बच्चे को देखते हुए बुद्धि में लाएं कि ये बाबा का बच्चा है, इस जन्म का संबंध में ये मेरा भले पोता है बेटा है परंतु ये बाबा का बच्चा है, पहले बाबा फिर इस जन्म का मेरा ये संबंध। घर में बहू है उसको भी देखते हुए लाए बाबा की ये बच्ची है, बाबा का वर्षा लेने के लिए इस घर में आई है, हकदार है पर बाबा की बच्ची है, इस भावना से देखें तो हम पाएंगे जितने भी हमारे संबंध हैं सबको देखते हुए बाबा को यदि हम लाएंगे तो हमारे जो संबंधों में कटुता है वो बदल के मधुर मधुर संबंध बन जाएंगे। ऐसे ही जिस घर में हम निवास करते हैं उस घर के लिए भी मेरा घर है ये नहीं, बाबा का घर है, बाबा ने मुझे सेवा के लिए दिया है, पहले बाबा। ये व्यापार ये कारोबार है, बाबा ने ये सेवा अर्थ कारोबार दिया है, यदि नौकरी भी कर रहे हैं तो बाबा की श्रीमत है उस श्रीमत का पालन कर रहे हैं। तो हर चीज को लौकिक को अलौकिक बनाएं। तो जहां लौकिक प्रवृत्ति हमारी अलौकिक बन जाएगी, लौकिक संबंध हमारे अलौकिक संबंध बन जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो बड़े मधुर संबंध हो जाएंगे। जैसे सेवा केंद्र पर हम जाते हैं, मधुबन में आते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणों से ही मिलते हैं, यहाँ कैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? यहाँ पर कोई किसी से क्रोध के आधार से एक दूसरे को देखता, कभी देखते हैं यहाँ पर नहीं, सब प्यार से देखते हैं एक दूसरे को। और अगर सेवा केंद्र पर जब क्लास के लिए जाते हैं उसके बाद हम वापिस अपने घरों में जाते हैं तो एक दूसरे को भले हम दृष्टि देते हैं बात भी करते हैं लेकिन बड़े ही स्नेह से एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हुए देखते हैं, एक दूसरे को सहयोग देने के लिए भी हम तैयार रहते हैं और बोलते भी बड़ा धीरे से हैं, बड़ी रूहानियत से बड़ी सभ्यता से बड़ी दिव्यता से बोलते हैं बातचीत करते हैं। परंतु जब लौकिक घरों में जाते हैं अब क्या होता है, अब क्या वो दिव्यता वहीं सेवा केंद्र पर रह गई और हम लौकिक में हो गए। पर बाबा ने क्या कह दिया कि लौकिक को अलौकिक बनाओ, तो उनको भी ऐसा ही समझो, ये भी सेवा केंद्र के विद्यार्थी हैं। जैसे हम और विद्यार्थियों से बात करते हैं और भाई बहनों से बात करते हैं, वैसे ही परिवार के सदस्यों से भी बात करें। इससे हम पाएंगे ये जो अलौकिकता आ जाएगी हमारे व्यवहार में, ये हमें बहुत सहज योगी बना देगी, बाबा के बहुत नजदीक में ले आएगी। तो हमने चौथी बात आपको बताई दिनचर्या की। जो बाबा ने दिनचर्या दी, अमृत वेले की, मुरली सुनने की, शुद्ध भोजन बनाने की, शुद्ध भोजन खाने की। आपको एक हंसी की बात सुनाते हैं। एक ज्ञान में कोई भाई नए नए चले और उनको पता लगा कि भाई बाहर का भोजन हम नहीं खाते हैं। तो अभी उसको पूरा नियमों का पता नहीं लगा था, केवल सुना कि बाहर का नहीं खाते हैं। तो अपने परिवार के साथ किसी होटल में गया तो परिवार के सदस्यों ने अपनी अपनी डिमांड रखी कि हमको ये चाहिए। तो ये जो नया बाबा का बच्चा था तो बोला मेरे लिए भी एक समोसा दे दीजिए। समोसा आ गया, सब अपना अपना खा रहे, वो तो ज्ञानी नहीं थे, पर ये अभी ज्ञान का, जब नए नए होते हैं तो नशा भी कुछ ज्यादा होता है, ज्ञान भी परिवार वालों को बहुत सारा सुना देते हैं, नहीं भी सुनना चाहे तो भी उनको सुनाते हैं। और यहाँ परिवार वाले फिर ध्यान से देखते हैं कि इनका व्यवहार, इनकी चाल चलन कैसी है। अब वो समोसा जो लिया तो समोसा तोड़ के वो अंदर में जो आलू मटर थे वो खाने लग गया, और जो बाहर का लेयर था वो निकाल निकाल के रखता रहा। बोला ये क्या कर रहे हो? बोला मैं ज्ञान सुनता हूँ ना, बाहर का नहीं खा सकता हूँ। तो हमें ऐसा नहीं करना है। कई बाबा के बच्चे सोचते हैं हम हल्दीराम का खा सकते हैं, कोई सोचते हैं हम बीकानेर का खा सकते हैं। ये कब बाबा ने कहा ही खा सकते हैं? क्योंकि जो बनाने वाले हैं वो ज्ञान तो नहीं सुनते, बाबा को तो याद नहीं करते, वो पवित्र तो नहीं रहते हैं, फिर कैसे हम उनके हाथ का खा सकते हैं? फिर यदि हमारा भोजन में शुद्धि नहीं होगी और हम सोचेंगे हमें बहुत अच्छे अनुभव हो, वो अनुभव नहीं हो सकते। इसीलिए बाबा ने हमारी दिनचर्या ही ऐसी बना के दी है कि हमने सेवा भी अवश्य करनी है और रात को विश्राम से पहले बाबा की याद में बैठना है, सब कुछ समेट के फिर सोना है, हमारा बिस्तर भी स्वच्छ हो, हमारे हाथ पैर भी साफ हो, उनको भी धो करके फिर हम बैठें। बाबा तो देखते थे, ये बाबा ही कहते थे ये कैसे, पांव यदि बच्चों के भी गंदे होते थे बाबा कहते नहीं देवता कैसे बनेंगे। तो रात्रि को सोने से पहले अच्छी नींद के लिए भी आवश्यक है हाथ पैर सब धो के फ्रेश होकर के हम फिर बाबा की याद में बैठें और जो हमारे मन के अंदर जो भी बात है बाबा को सुनाएं, क्लियर करें खाता, उसके बाद हम सोएं। तो यदि हम दिनचर्या अनुकूल भी चलेंगे तो भी हम पाएंगे हमें योग के बहुत अच्छे अनुभव होंगे। और पांचवी बात है अभ्यास की। अभ्यास जब तक किसी चीज का नहीं करेंगे, जैसे अर्जुन ने अभ्यास किया उसी से संबंधित एक दूसरी बात भी आती है पांडव और कौरवों की। पांच पांडव प्रसिद्ध हैं, लेकिन मालूम है सभी को जो लिखा गया है महाभारत में कि श्री कृष्ण अर्जुन से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। पांडव तो सभी विशेषता से संपन्न थे, अलग अलग विशेषताएं थी सबकी, लेकिन अर्जुन को ही सबसे ज्यादा प्यार क्यों करते थे? एक बार पूछा श्री कृष्ण से, तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मैं समय आने पर आपको उत्तर दूंगा। और एक बार क्या हुआ कि अर्जुन सोए हुए थे और श्री कृष्ण वहां से गुजर रहे थे। क्या देखा कि अर्जुन की जो धड़कन चल रही थी, हर श्वास में आवाज आ रही थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तब कृष्ण ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, देखो मैं अर्जुन को ही सबसे ज्यादा प्यार क्यों करता हूं? क्योंकि अर्जुन के हर श्वास में श्री कृष्ण है। और ये तो हम सभी को पता है वो अर्जुन कौन है। हम सभी बाबा के बच्चे जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, अर्जुन माना ज्ञान अर्जन करने वाले, और शिव बाबा को याद करने वाले, श्री कृष्ण जैसे बनने वाले हम बच्चे, तो हम सभी को अभ्यास करना है कि हमारा हर संकल्प बाबा के प्रति हो, हमारा हर बोल बाबा के प्रति हो, हमारे श्वास में बाबा, जिसको भक्ति मार्ग में क्या कह दिया, श्वासों श्वास राम को याद करो। तो बाबा की याद इतनी गहरी हो जाए, जब इन थोड़ी सी बातों का ही हम ध्यान रखते हैं, तो हम पाएंगे हमें ऐसे गहन अनुभव होंगे जैसे हम सागर की बात बता रहे थे। जब सागर की गहराई में कोई चला गया और जाके फिर बाहर आ गया, उसे सागर में जाना भी आता हो और बाहर आना भी आता हो, तो आप पाएंगे एकदम पूरा गीला, एकदम उसके अंदर ताजगी, सफुरती, खुशी, आनंद, पूरा एकदम भीगा हुआ। क्यों? सागर की गहराई में चला गया और फिर बाहर आ गया। हम भी बाबा सागर की गहराई में जब चले जाएंगे और उसके बाद बाहर आएंगे, भले इसी दुनिया में हैं, परंतु हम भीगे हुए बाबा के प्यार में, तो हमारे अंदर वो ताजगी, वो उमंग, उत्साह, वो खुशी, अतीन्द्रिय सुख, वो इतना अधिक हो जाएगा कि दूसरों को भी मालूम पड़ेगा कि हम किस सुख में रह रहे हैं। ऐसे बाबा के प्यार में खोना, बाबा के प्यार की गहराई में चले जाना, ऊपर ऊपर से देखकर खुश मत हो जाओ कि हम इतने टाइम के ज्ञानी, इतने टाइम के योगी, हमने ये प्रदर्शनी कर दी, हमने इतना धन सेवा में लगा दिया। सिर्फ ऊपर ऊपर से मत सोचो, ये भी सब जरूरी है, क्योंकि ऊपर से जाएंगे तब तो अंदर भी जाएंगे ना, तो तो वो भी जरूरी है, परंतु गहराई में जाना और ज्यादा जरूरी है। और जो गहराई में चला जाता है तब फिर उसके लिए बाबई संसार है। तो किस किस के लिए बाबई संसार है सोच के हाथ खड़ा करना। बाबा ने लास्ट अभी क्या कहा, बाबई संसार है तो फिर पुराने संस्कार क्यों? पुराने संस्कार फिनिश, परिवर्तन। तो बाबा को संसार समझने वाली आत्माएं इस संसार में ऐसे रहती हैं जैसे निमित्त मात्र, उनके पांव धरती पर नहीं होते। क्या कहते हैं योगी के लिए, क्या कहते हैं कहावत है, योगी के पांव धरती पर नहीं होते, धरती से ऊपर होते हैं। अब धरती से ऊपर कैसे चलेंगे? पर उनके बुद्धि रूपी पांव धरती पर नहीं होते, उनकी बुद्धि छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी उलझनों में उलझती नहीं है। वो सदा बाबा के प्यार में, बाबा की मस्ती में मस्त रहते हैं। तो आप सभी भी बाबा के ऐसे मस्त फकीर बच्चे यहाँ से बन के जाना। यहाँ पर आए हैं, बहुत कुछ पाया है, पर उसको संभाल के रखना और वहां पर प्रतिदिन यूज करना। केवल इसमें खुश मत हो जाना, बहुत बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। कई कई तो बहुत अच्छा किसको समझते हैं, इतने हॉल ना बहुत बड़ा था, बहुत लोग थे, बड़ा ही अच्छा था। अभी हॉल बड़ा था वो ठीक, वो तो अच्छा है, बाबा का घर है, पर मुझे अपनी स्थिति को अच्छा कैसे बनाना है? योग के गहरे अनुभव के आधार से, बाबा के प्यार में डूब करके ऐसे अनुभव करें, जब बाहर आए फिर हमें संसार असार संसार दिखाई दे। ठीक है, जब तक इस शरीर में है तब तक रहना है, परंतु रहना है केवल सेवा अर्थ, बाकी तो हमारा कार्य केवल बाप समान बनना है। हमारा जन्म ही, ये ब्राह्मण जन्म ही हुआ है ईश्वरीय सेवा अर्थ। बाबा ने हमें चुना ही इसलिए है कि हम बाबा के ऐसे अनमोल रतन बन जाएं जो बाबा अपने शोकेस में हमको रख दे, बाबा के शोकेस के शोपीस। तो शोपीस को कहाँ रखते हैं? शोपीस में, शोकेस में जो शोपीस रखते हैं बहुत अच्छे अच्छे रखते हैं। तो बाबा ने किसी को दिल्ली में, किसी को हरियाणा में, किसी को किसी और बॉम्बे में, अलग अलग स्थानों के शोकेस में रखा है शोपीस बना के, ताकि अन्य लोग देखें शोपीस को, कितने अच्छे शोपीस हैं, अब तो अंदर आएंगे माल लेने के लिए। तो हम सभी ऐसे शोपीस बन करके बाबा का नाम रोशन करें, परंतु अपने योग के चार्ट को बहुत अच्छा बनाएं। ठीक है, ओम शांति।